Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
कि जो देवदत्त खड़ा है ना उनको बुला के ले आओ. वहां में लाल कपड़ा पहन के नीली शर्ट पहन के जो खड़ा है वो देवदत्त है. हाथ हिला हिला के जो बात कर रहा है वो देवदत्त है. जिसका उसमें सांवला रंग है वो देवदत्त है. सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. सीधे सीधे आप बोल सकते हैं जो देवदत्त है उसको बुला के लाओ. यहां पर केवल नाम मात्र से भी काम चल जाता है. लेकिन नाम बताने से पहले देवदत्त का पूरा ज्ञान होना जरूरी है. अब यहां पर जिस परमात्मा के बारे में बताना है, यदि हम परमात्मा को पहले से जानते होते तो नाम लेने मात्र से भी काम चल जाता. परमात्मा को हम नहीं जानते हैं या नहीं जाना है. जाना हुआ होता तो नाम से काम चलता. जाना हुआ नहीं है, इसमें क्या कारण है? मोटी सी बात है, याद रख लीजिएगा. परमात्मा को हमने अभी तक नहीं जाना है, हमारे द्वारा नहीं जाना हुआ है. इसका कारण यह है कि हमने जन्म लिया है, हमें जन्म लेकर के आना पड़ा, इसलिए अभी तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ. यदि इससे पिछले जन्म में परमात्मा को जान लिया होता, ज्ञान हो गया होता, तो आज हमें जन्म लेकर के ऐसे आना नहीं पड़ता. सोना मत भाई, बार बार बोलता हूं कथा में, सोने से अगले जन्म में सांप बनना पड़ेगा. और जो जितने गहरी नींद में जाएगा उतना ही भयंकर कोबरा वाले योनि में जाएगा. हल्के हल्के सोने वाले तो कम जहरीला सांप होगा. वो जो गहरी नींद में जाएंगे क्या बनेंगे? किसी का कोबरा नाम मत रखना. अब परमात्मा के लिए कौन सा गुण का प्रयोग हो तो कह दिया निर्गुणम. वो तो गुणों से रहित है. अब उसके लिए शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि शब्दों की प्रवृत्ति के लिए चार चीजें हैं और इन चार चीजों का एक एक निषेध करते चले जाते कि ये सब कुछ भी परमात्मा में लागू नहीं होता. कोई गुण हो तो बता दे वे परमात्मा का लाल रंग है, पीला रंग है, काला रंग है. निर्गुण होने के कारण शब्द के द्वारा बताना मुश्किल है. शब्द की प्रवृत्ति हो नहीं सकती. वैसे ही जाति एक परमात्मा से अतिरिक्त कोई दूसरे परमात्मा हो तो जहां दो हो वहां पर जाति का प्रयोग होता और कहते हो आप एकमेवा द्वितीयम. वह एक ही है, एक एव, एकम एव अद्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम. दो न होने से जाति भी नहीं है, जाति न होने से भी यहां शब्द की प्रवृत्ति हो नहीं सकती. तीसरा जो हेतु दिया क्रिया. क्रिया से ही विक्रिया पैदा होती है. क्रिया से क्या पैदा होगी? विक्रिया. और ये कैसे है? अविक्रिय, साथ ही निष्क्रिय. और निष्क्रियता अविक्रियता किसमें होती है? जो व्यापक होता है. परमात्मा व्यापक है, इसलिए इसको क्रिया के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता. चौथा जो हेतु दिया संबंध. संबंध भी कैसा संबंध? कहीं बैठा हो तो बता दे अमुक जमीन पर जो बैठा है, अमुक टेबल पर, कुर्सी पर जो बैठा है, मंच पर बैठा है, वही परमात्मा है, ऐसा भी नहीं. फिर अब करे तो करे क्या? यही चार चीजें हैं और इन चारों का निषेध कर दिया. तब बोलते हैं कि भले ही इन चारों में से कुछ भी लागू नहीं हो सकता, फिर भी इस संसार के साथ कुछ न कुछ ऐसा झूठा ही सही संबंध तो है. बाद में संसार का निषेध कर दोगे, शरीर का भी निषेध कर दो, यहां तक कि जीव को भी मिथ्या कह दिया. ब्रह्म में जीव की कल्पना क्या है? मिथ्या कल्पना है. जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं. लेकिन जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता है तो जीव भी कहना पड़ेगा, ईश्वर जीव का भेद भी बताना पड़ेगा, जगत का भी प्रतिपादन करना पड़ता है। और इन सब के लिए सरल उपाय है, जैसे वहां पर भृगु को वरुण जी उपदेश देते हैं, तत्त्वमसी महावाक्य में थोड़ा वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है, बहुत मोटी सी बात है, बार बार सुनते भी हो फिर भी आप लोग भूल जाते हो, तो याद रख लेना। तत् और त्वम में हम ज्यादा व्याख्या भी नहीं करेंगे। तत् का मतलब ईश्वर और त्वम का मतलब जीव, बस सीधी सी बात है। लेकिन जो ईश्वर चेतन विशिष्ट है और जो जीव भी चेतन विशिष्ट है, चेतन है लक्ष्यार्थ, जीव और ईश्वर जो बताया गया ये है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में ये अंतर कर लीजिएगा। तत् का वाच्यार्थ है ईश्वर, त्वम का वाच्यार्थ है जीव, लेकिन तत् का लक्ष्यार्थ है चेतन और त्वम का लक्ष्यार्थ भी है चेतन। इतने तो याद रहेगा, आप लोग जब सुनते हो तब सब याद आता है, और बाद में जाके क्या होता है, पोता पोती नाती ये सब याद आ जाते हैं, वहीं चले जाते घूम फिर। यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्याद्याः सृष्ट्यादि श्रुतयः तत्पदवाच्यार्थस्य समर्पिकाः। जिस ईश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय की व्यवस्था की जाती है, ये यतोवा इमानी भूतानि जो मंत्र है, इससे तत्पद का जो वाच्यार्थ है ईश्वर, ये तत्पद के वाच्यार्थ बता दिया गया इस मंत्र से। जैसे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण करते हैं ना, तो स्वरूप लक्षण हो गया लक्ष्यार्थ और तटस्थ लक्षण ही हो गया वाच्यार्थ। जब इसको अलग अलग आप सुनोगे तो भ्रम हो जाता है, लेकिन अब उसी में इसको मिला रहे हैं साथ साथ। स्वरूपम एव लक्षणम स्वरूप लक्षणम सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, यह है स्वरूप लक्षण, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है, जैसा है। स्वरूप लक्षण को ही बोलते हैं साधारण लक्षण, और तटस्थ लक्षण हो जाता है असाधारण। विशेष रूप से जब परमात्मा के बारे में बताया जाए, ये हो गई उसकी असाधारणता। और सामान्य रूप से क्षण क्षण में कण कण में जो विद्यमान है, ये हो गए उसके साधारणता। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में ऐसा है। अब कई बार घाल मिल करते हम लोग, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का उदाहरण भी सुनते हो। इस समय आप यहां कथा हॉल में बैठ करके अपने आप को क्या मान रहे हो कि मैं श्रोता हूं? हॉल से बाहर निकलने के बाद क्या बनोगे? हाँ, श्रोता नहीं रह जाओगे, क्या बनेंगे? एक बार क्या हुआ, राम और रावण का मामला आ गया। राम जी ने रावण से उधार ले रखा था, और रावण ने कई बार तगादा किया, जो मेरा पैसा है दे दो। राम जी ने कहा ये रामलीला हो जाए, इसमें जो मिलेगा ना वो हम तुम्हें दे देंगे। रावण ने देखा है कई रामलीलाएं हो गई, हमेशा यही बहाना करते, ये राम ऐसे मानेगा नहीं, मैं तो मंच पर ही आज मजा चखाऊंगा राम को। राम ने बाण मारा, रावण को मरना था, रावण बोलता मैं मरूंगा ही नहीं। लोग चौंक गए, क्या हो गया? रावण बोलता है भाइयों, ये जो राम है इसने मेरा पैसा उधार ले रखा है, और इससे पहले भी कई बार मैं मांग चुका हूं, ये रामलीला हो रही है अभी, मैं इसलिए पोल खोल रहा हूं कि ताकि रामलीला के बाद मुझे ये पैसा देगा कि नहीं देगा, अभी यहीं आप लोगों के सामने स्वीकार करें। राम होकर के झूठ बोलेगा तो इसका पाप इसको लगेगा। राम और रावण तो मंच पर बने हुए हैं, लेकिन व्यवहार की बातें कहां ला दिया रावण ने? मंच पर। मंच पर जब आप बैठे हो उस समय राम है रावण है, मंच से नीचे उतरने के बाद राम का जो असली नाम होगा वही बोला जाएगा ना, ये देवदत्त राम के पात्र बनता है, ये जो यज्ञदत्त है ये रावण बनता है। तो जो यज्ञदत्त और देवदत्त है ये है उसका स्वरूप लक्षण, और मंच पर जो राम और रावण बने ये है तटस्थ लक्षण। विशेषण से युक्त हो जाए, जब किसी चीज से अपने को अलग करके दिखाते हो यही है तटस्थ लक्षण। सामान्य बनने में आनंद है या विशेष बनने में आनंद है? भले आपके जो भी अंदर की इच्छा हो यहां तो बोल लो, बाहर आप रहना जैसे विशेष हो वैसे रहना, यहां तो बोलो। घर में रह करके आप जितना सहज होते हो या बाहर रह करके? घर में ये दुपट्टा कहीं डाल दिया, बनियान खोल के बैठ गए, गर्मी लग रही है, जैसे भी आप बैठे हो अपना घर है, अपना घर क्या बोलते हैं, हग हग भर, दूसरे का घर थूकने में डर। दूसरे के वहां जाते बड़े सचेत होके बैठते, कोई ऐसा अपने से व्यवहार ना हो जाए कि बाद में ये क्रिटिसाइज करेगा, ऐसा है वैसा है, बाथरूम गंदा कर दिया, कमरा गंदा कर दिया, अपने कमरे में बाथरूम में किचन में रात बिरात जब मर्जी आते हो जाते हो, दूसरे के वहां कर सकते हो ऐसा? बाहर जब निकलते हो बन ठन करके निकलते हो दूसरे को दिखाने के चक्कर में, और अपने घर में आप सहजता से रहते हो, तो सामान्य बनने में जो आनंद है वो विशेष बनने में, विशेष बनने में हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, हमारे ध्यान ही दूसरे तरफ रहता है, सब लोग हमको देख रहे हैं, कहीं बाल तो नहीं बिगड़ा, कहीं कुछ तो नहीं बिगड़ा, लेकिन घर में ये सब देखने की जरूरत नहीं। घर में रहते हो तो शीशा कम देखते हो, घर से निकलने से पहले शीशा में बार बार देखते हो। भगवान बोलते हैं परमात्मा की शरण में जाओगे तो उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि वो अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। बाकी कितने भी उपदेश सुनो ये सब तरीका तो है, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, ये आत्मा प्रवचन के द्वारा लाभ के योग्य नहीं है, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ये तो जब तक उनकी कृपा न हो। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मैं उस परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं, इसका मतलब है जिस रास्ते पर मैं चल चुका हूं चल रहा हूं उसी पर तुम भी चलो। एक उदाहरण है कि भगवान कृष्ण कब चले होंगे रास्ते पर, कब उनको मौका मिला ऐसा। भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में सरसैया पर लेटे हुए हैं, वहीं पर उनको महाभारत में पांडवों की विजय, राज्य की प्राप्ति, राज्याभिषेक आदि की खबर सब मिलती है, लेकिन अभी तो उत्तरायण की प्रतीक्षा में है वो, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था उनको। भगवान कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर से कि एक बार भीष्म पितामह के पास चलकर मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। युधिष्ठिर गए, प्रणाम किया और भीष्म पितामह से का धर्म नीति विषयक राजनीति विषयक जो जो प्रश्न किया सबका ठीक ठीक उत्तर दिया भीष्म पितामह ने। अंतिम में युधिष्ठिर ने कहा कि जिस परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया, जिनकी ऐसी लीला है, जिसको जाने बिना कल्याण नहीं हो सकता, उस परमात्मा को जानने का जो तरीका है कैसे उसको जानना है ये भी कृपया उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, भगवान की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि युधिष्ठिर, जो जो प्रश्न तुमने किया हमने सबका ठीक जवाब दिया, लेकिन अब जो तुमने परमेश्वर संबंधी प्रश्न किया है इसका जितना सुंदर उत्तर भगवान दे सकते हैं, इसका उपदेश जो तुम्हें भगवान से मिलेगा वो उपदेश मैं भी नहीं दे सकता। इशारे ही इशारे में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहने लगे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि भगवान ने कब उपासना की होगी, कब इन्होंने कैसे शिव तत्व जाना, परम तत्व जाना। तो भीष्म पितामह कहने लगे, इन्होंने भगवान शंकर की बड़ी उपासना की है और इनका बड़प्पन जो है वो भी तुम्हें बताता हूं। शिविर में हमला करने के लिए जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जा रहा था, उस समय भगवान शंकर का आवाहन किया, शंकर जी आए और उसने कहा कि मैं अब जा रहा हूं अंदर आक्रमण करने के लिए, कृपा करके आप मेरी रक्षा करना। शंकर जी ने कहा, बाकी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अर्जुन और कृष्ण से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। वो डर गया, बोले अर्जुन और कृष्ण तुमसे भी अधिक मेरे भक्त हैं, वो जैसी मेरी उपासना करते हैं वैसे तुम भी नहीं कर सकते हो। तो जिन्होंने अपने मुखार बिंद से ही जिनकी श्रेष्ठता बताई तो समझ लो ये कितने श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछ लिया, भगवान आपने भगवान शंकर की उपासना कब की? भगवान ने बताना प्रारंभ किया, बात ऐसी ऐसी है, क्या हुआ, रुक्मिणी के तो संतान हो गए थे और सत्यभामा की कोई संतान हुई नहीं, बार बार कहे कुछ करो कुछ करो, तो मेरे मुंह से निकल गया, देखो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ हैं एकमात्र भगवान शंकर है और कोई नहीं है। तो बोले वो तो आपके हाथ में, जब शंकर जी कर सकते हैं तो उनको मनाओ। इसके लिए भगवान चले गए केदारनाथ, भगवान कृष्ण केदारनाथ जाते हैं। उपमन्यु महर्षि से ओम नमः शिवाय इस मंत्र की दीक्षा लेते हैं, शिव पंचाक्षरी, और भगवान ने बड़ा तप किया। दिन का भोजन पहले छोड़ा एक महीने तक, दूसरे महीने में जाके रात्रि का भोजन छोड़ा, ऐसे करके फल के ऊपर रहना शुरू किया, फिर फलों को भी छोड़ते हुए जल के ऊपर रहना शुरू किया, पत्ते खा करके, और अंतिम में तो कुंभक प्राणायाम के द्वारा श्वास की गति को ही रोक दिया। ऐसी उग्र तपस्या करने पर भगवान शंकर पार्वती के समेत कृष्ण के पास आए, उनको दर्शन देने के लिए, वरदान देने के लिए। भगवान तपस्या कर रहे थे, शंकर जी ने पूछा कि भाई इतना कठोर तप क्यों कर रहे हो, जो चाहिए मांग लो। तो जैसे लिखते हैं आचार्य, सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदनीयं मया। भगवान कृष्ण ने शिव जी से कहा कि आप जो कह रहे हो मांग लो, ये बहुत खराब लग रहा है सुनकर के, आप कहो मांग लो और मैं मांगू, ये तो व्यापार वाला मामला हो जाएगा। मांगता कौन है? जो अपने से भिन्न मानता है सामने वाले को। आप भी नहीं चाहते दूसरे का माल हमें मिल जाए, लेकिन आप अपने घर में अपना माल चाहते हो कि मुझे मिल जाए, तो मिले मिलाया है। तो कृष्ण बोलते हम में और आप में कोई भेद है क्या जो मैं आपसे मांगू? सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः, आप जैसे दयालु और सर्वज्ञ, दोनों विशेषण इसलिए दिया, कई बार लोग जो दयालु होते हैं ना, जो देने की इच्छा रखते हैं, उनके अंदर ये उन्हें पता नहीं होता कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, लेकिन आप तो सर्वज्ञ भी हो, आपको तो सब पता है पहले से ही किसको क्या देना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो लौकिक लोग दयालु होते हैं वो लोग थोड़ी अपेक्षा भी करते हैं कि कभी कोई याद दिलावे। आप भी बोल देते हो कभी कुछ चाहिए तो जरा एक फोन कर देना, याद दिला देना। किसी से लेना भी होता है तो आपको कहना पड़ता है बाबूजी जरा वहां भी ध्यान दीजिए। तो क्या भगवान को भी याद दिलाना पड़ेगा? वो तो सर्वज्ञ है। शंकर जी बोले फिर इतना जो तप किया है मुझे याद किया इसके पीछे कोई कारण तो होगा? भगवान कृष्ण बोलते क्या कहूं, आपसे इतना अंतरंग प्रेम है कि आपको याद किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो याद करने के लिए द्वारकापुरी कोई जगह कम पड़ी थी क्या? बाद में भगवान ने यह भी नहीं कहा कि सत्यभामा ने मुझे भेजा। भगवान ये बोलते हैं कि देखिए भगवान, मैं आपको वहां याद तो करना चाहता था लेकिन जिस तरह से याद करना चाहता था उस तरह से कर नहीं पाता था। इसके लिए ऐसी सुंदर जगह, एकांत जगह ही उपयुक्त है और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसमें हो ना हो सत्यभामा की भी बड़ी कृपा है, यदि वो मुझे प्रेरणा नहीं देती तो मैं यहां आपके भजन करने के लिए नहीं आ पाता। नहीं तो लोग क्या कह देते, मुझे तो नहीं चाहिए सत्यभामा को चाहिए, उसने मांगा है, उसने कहा है, उसने भेजा है, मेरी कुछ इच्छा नहीं है। आप लोग जैसे व्यवहार में हम लोग बोल देते खाने की इच्छा होती स्वयं के नाम लगा देते दूसरे के, खाओगे लोगे जैसे लगता है मेरी भूख की जानकारी इसको लग गई है। वहां अपना ही उद्देश्य होता है लेकिन हम दिखाते हैं केवल सामने वाले को बोलकर। कृष्ण बोलते हैं आपसे इतना अंतरंग प्रेम है। शंकर जी समझ गए भले ही इन्होंने तप किया, बोलने वाले तो है नहीं। बोलते ठीक है, जैसा आपका मेरे प्रति अंतरंग प्रेम है वैसे मेरे भी, मेरे मन में भी आपके प्रति उतना ही प्रेम है। जाओ आपको जो है सभी से दस दस पुत्र होंगे। शंकर जी के वरदान से ही ऐसा कृष्ण को हुआ जो आप सब भागवत में सुनते हो। पार्वती जी ने कहा मैं भी आई हूं, मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा। पार्वती जी ने भगवान कृष्ण से कहा आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ, ये पर भगवती पार्वती का दिया हुआ आशीर्वाद। तो कृष्ण ने अपना अनुभव युधिष्ठिर को सुनाया कि इस तरह से निमित्त बना शिव जी की उपासना करने का, और उसमें उपमन्यु महर्षि से मंत्र की दीक्षा, शिव सहस्रनाम आदि के द्वारा शिव जी की अर्चना किस पद्धति से करनी चाहिए वो सब क्रम से विधि विधान पूर्वक युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण समझाते हैं और बोलते हैं एक यदि जीवन में कोई है शरण के ग्रहण करने के योग्य वो है शिव जी। शिव प्रसादे न बिना न सिद्धि, शिव प्रसादे न बिना न बुद्धि, शिव प्रसादे न बिना न युक्ति, शिव प्रसादे न बिना न मुक्ति। शिव के प्रसन्नता के बिना ये चीजें मिलना मुश्किल है। शिव प्रसादे न बिना न सिद्धि, शिव जी के प्रसन्न हुए बिना सिद्धि नहीं मिल सकती, उनके प्रसन्नता के बिना बुद्धि नहीं मिल सकती। वो जब प्रसन्न होते तभी हमें युक्ति मिलती है, और जब युक्ति मिल गई तो उन्हीं की कृपा से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। तो ऐसे जिसने जीवन में ग्रहण किया है ऐसे शिव जी के कृपा से भगवान कृष्ण ने जो कुछ प्राप्त किया वो सब उपदेश युधिष्ठिर को दिया। उपदेश देने से पहले जिस रास्ते पर हम चले हो, जो हमारे जीवन में कुछ हो उसके अनुसार यदि हम कुछ करने की कोशिश करते वही आपतस्तु यथार्थ वक्ता हो जाते हैं। परमात्मा के लक्षण बता रहे, ये तो वा इवानी भूतानी जायन्ते, इससे वाच्यार्थ बता दिया, फिर उसका लक्ष्यार्थ भी बताएंगे और आगे आगे जैसा प्रसंग आएगा फिर विचार किया जाएगा। हरिओम।